एक ऐसी चिट्ठी की कल्पना कीजिए जो उस दौर के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी में पढ़ी जानी है, रोम।
वही तो, उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत।
बिल्कुल, एक ऐसे समाज को संदेश दिया जा रहा है जिसने हमेशा ताकत और जीत को पूजा है। और सोचिए, उन्हें बताया क्या जा रहा है कि जिस व्यक्ति को उनके ही कानून ने, उनकी ही सरकारी ताकत ने एक मामूली अपराधी की तरह मौत की सजा दे दी थी, वही व्यक्ति दरअसल इस पूरे विश्व का राजा है।
एक आम इंसान की नजर से देखा जाए तो ये पूरी तरह से मूर्खता लगती है। पीआर या मार्केटिंग के किसी भी नियम के अनुसार ये एक ऐसी रणनीति है जो लिखने वाले को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है।
सही कहा, और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी क्रांतिकारी विचार की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा रोमन्स यानी रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय आयात 2 से 17 पर दिए गए तीसरे लेक्चर के मुख्य हिस्सों को हम खोलने वाले हैं।
और हमारा मुख्य उद्देश्य पॉल के उस शुरुआती संदेश के मकसद को समझना है। ऐतिहासिक तथ्यों और प्राचीन भाषाओं के इस खजाने के जरिए हम जानेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी के रोमन समाज में गॉस्पेल, राइचसनेस और फेथ का असली मतलब आखिर क्या था।
एग्जैक्टली, और सबसे बड़ा सवाल जो मैं सोच रही थी वो ये है कि पॉल को इस संदेश पर इतना भरोसा क्यों था। रोम जैसी जगह पर जहां रुतबा ही सब कुछ था, वहां हार के प्रतीक को जीत के रूप में पेश करना खुली चुनौती थी।
देखिए, इस भरोसे के पीछे एक लंबा ऐतिहासिक आधार है। पॉल शुरुआती आयतों में ही ये साफ कर देते हैं कि उनका संदेश कोई अचानक आया नया आविष्कार नहीं था। ये ओल्ड टेस्टमेंट यानी पुराने नियम के भविष्यवादियों द्वारा सदियों पहले ही तय किया गया था।
जैसे लेक्चर में डॉक्टर कीनर आइज़ाया 52.7 का जिक्र करते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, जहां शांति और सुसमाचार यानी गुड न्यूज के आने की भविष्यवाणी की गई थी। और इस संदेश के बिल्कुल केंद्र में एक ही विषय है, परमेश्वर का पुत्र।
यहां ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब पॉल जीसस को परमेश्वर का पुत्र कह रहे थे, वो भी रोम में, तो क्या ये सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल बवाल खड़ा करने जैसा नहीं था?
आपका इशारा सीजर की तरफ है।
हाँ, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, उस वक्त रोम में सीजर ऑगस्टस और उसके बाद के सम्राट खुद को सन ऑफ गॉड या दिव्य पुत्र बुलवाते थे। तो क्या पॉल सम्राट को चुनौती दे रहे थे?
ये बहुत ही सटीक पॉइंट है। हाँ, रोमन इंपीरियल कल्ट के तहत सम्राट खुद को दिव्य मानते थे। सिक्कों पर सीजर को परमेश्वर का पुत्र लिखा जाता था। लेकिन जब पॉल जीसस को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो वो किसी जमीनी या राजनीतिक उपाधि की बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे दो अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं, फ्लैश यानी शरीर के अनुसार और स्पिरिट यानी आत्मा के अनुसार।
इसे थोड़ा और खोलते हैं, फ्लैश और स्पिरिट का यहाँ क्या अर्थ है? क्योंकि अक्सर जब लोग ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जीसस शायद 50% इंसान थे और 50% भगवान। मुझे हमेशा से ये अजीब सा मैथ लगता था।
वही ना, यही वो जगह है जहाँ आज की आधुनिक सोच ठोकर खाती है। यहाँ किसी आंशिक विभाजन या 50-50 वाली बात नहीं हो रही है। ये दोनों शब्द उनकी पूरी पहचान के दो अलग अलग आयाम हैं।
तो फ्लैश का यहाँ सीधा मतलब क्या हुआ?
फ्लैश शब्द उनकी जातीय और ऐतिहासिक उत्पत्ति को दर्शाता है। ये साबित करता है कि जमीनी तौर पर उनका जन्म डेविड के वंश में हुआ था, जो यहूदी मसीहा होने के लिए एक जरूरी शर्त थी। वो सच में इतिहास का हिस्सा थे।
राइट, और दूसरी तरफ स्पिरिट।
दूसरी तरफ जब पॉल स्पिरिट ऑफ होलीनेस की बात करते हैं, जिसे यहूदी परंपरा में रुआ हाकोदेश कहा जाता था, तो वो उनकी दिव्य पहचान को दर्शा रहे हैं। ये दिव्य पहचान उनके पुनरुत्थान यानी मौत के बाद जी उठने की शक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित की गई थी।
आई मीन, ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा हो गया ना। जमीनी तौर पर उनका DNA डेविड के वंश से आता है और दिव्य तौर पर उनका पुनरुत्थान उन्हें परमेश्वर का पुत्र घोषित करता है, जबकि सीजर की दिव्यता सेना और तलवारों पर टिकी थी।
पॉल को एक खास अधिकार मिला था जिसे वो ग्रेस ऑफ अपोसलशिप कहते हैं। पर डॉक्टर कीनर बताते हैं कि यहाँ कृपा या ग्रेस का मतलब उस डेफिनेशन से अलग है जो हम आजकल चर्चेस में सुनते हैं।
हाँ, आम तौर पर जब लोग ग्रेस शब्द सुनते हैं तो बस यही लगता है कि ये एक तोहफा है जो हमें बिना किसी मेहनत के मिल गया, फ्री गिफ्ट।
पर पॉल के संदर्भ में ये थोड़ा और प्रैक्टिकल था। उनके लिए कृपा सिर्फ एक शांति देने वाला एहसास नहीं थी, ये एक शक्ति थी, एक एम्पावरमेंट थी। परमेश्वर ने उन्हें क्षमता दी ताकि वो गैर यहूदियों यानी जेंटाइल्स के बीच ओबीडियंस ऑफ फेथ यानी विश्वास की आज्ञाकारिता ला सकें।
तो ये किसी को मीठी तसल्ली देने जैसा नहीं था, बल्कि एक नए समाज का निर्माण करने का भारी काम था। और सच कहूं तो ये काम आसान बिल्कुल नहीं रहा होगा, खास तौर पर जब हम उनकी ऑडियंस को देखते हैं।
बिल्कुल आसान नहीं था। रोम का चर्च उस वक्त मुख्यतः जेंटाइल से ही बना था।
हाँ, 54 AD के आसपास कुछ यहूदी रोम वापस आए जरूर थे, पर बहुमत उन्हीं लोगों का था जो पेगन बैकग्राउंड से थे। फिर भी पॉल उन सभी को एक बहुत ही खास शब्द से संबोधित करते हैं, सेंट्स यानी पवित्र लोग, ग्रीक में हागियोस।
और हेगियोस को ठीक से समझना बहुत जरूरी है।
अरे हाँ, क्योंकि आजकल तो सेंट उसको बोला जाता है जिसके सर के पीछे एक ग्लोइंग चक्र हो, जिसने जिंदगी में एक भी गलती ना की हो।
वही, पर हेगियोस का अर्थ परफेक्शन या गलतियां ना करना बिल्कुल नहीं है। ग्रीक परंपरा और ओल्ड टेस्टमेंट की टेम्पल सेटिंग के हिसाब से इसका सीधा सा अर्थ है सेट अपार्ट, यानी अलग किया गया किसी खास उद्देश्य के लिए।
इसे हम मंदिरों के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मंदिर में इस्तेमाल होने वाला कोई खास बर्तन हो, अब वो बर्तन मिट्टी का हो या सोने का, उसकी कीमत उसकी धातु से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसे रोजमर्रे के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसे दुनिया की आम चीजों से निकालकर एक पवित्र काम के लिए रख दिया जाता है।
ये बर्तन वाली तुलना उस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ती है। उन रोमन लोगों को यही समझाया जा रहा था कि हालांकि वो उस पेगन समाज में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें वहां के स्वार्थी कल्चर के अनुरूप नहीं चलना है।
उनकी पूरी जिंदगी, खान पान, आपस में मजाक करना, सब कुछ परमेश्वर के लिए कॉन्सेक्रेटेड होना चाहिए। पर यहां मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। अगर ये चर्च परमेश्वर के लिए सेट अपार्ट था, तो पॉल इनके पास पहले क्यों नहीं आ गए? वो तो लगातार कह रहे थे कि वो आना चाहते हैं, पर देरी हो रही है।
हाँ, देरी का मुख्य कारण उनका मिशन था। पॉल खुद को सिर्फ शहरी लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रीक्स और बारबेरियंस दोनों के प्रति कर्जदार मानते थे। वो ऐसे नए इलाकों में काम कर रहे थे जहां किसी और ने शुरुआत नहीं की थी, अनरीच्ड प्लेसेस में।
तो वो उन जगहों को पहले कवर करना चाहते थे।
पर वो रोम को भूले नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, वो बस ठीक समय का इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर रोमन्स 1:16 का वो मशहूर स्टेटमेंट आता है, जहां पॉल कहते हैं, मैं इस सुसमाचार से लज्जित नहीं हूं।
ओके, यहां मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। मैं लज्जित नहीं हूं यानी मैं अशेम्ड नहीं हूं। ये एक बड़ा ही डिफेंसिव बयान लगता है। अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, तो शर्म आने का सवाल ही कहां पैदा होता है। जैसे अगर कोई लॉटरी जीते तो क्या वो कहेगा कि मैं लॉटरी जीतने से शर्मिंदा नहीं हूं? सुनने में अजीब लगता है, पर इस गहराई को समझने के लिए हमें 1st century के मेडिटेरेनियन समाज के ऑनर एंड शेम कल्चर को समझना होगा,
जिसमें शर्म एक इंटरनल फीलिंग नहीं बल्कि एक सामाजिक स्टेटस था, राइट?
एग्जैक्टली। आज हम शर्म को निजी भावना मानते हैं, पर उस दौर में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी करेंसी थी। और सोचिए, पॉल का संदेश किसके बारे में था? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे रोम की सरकारी ताकत ने क्रॉस पर लटकाकर सूली दी थी।
और क्रॉस पर मरना कोई मजाक नहीं था। ये सबसे निचले स्तर के अपराधियों और साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने वालों की सजा थी। रोम इसका इस्तेमाल लोगों को जलील करने और डराने के लिए करता था।
बिल्कुल। तो एक ऐसे स्टेटस कॉन्शियस समाज में, जहां दौलत और ताकत को पूजा जाता था, वहां एक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति को अपना राजा मानना सामाजिक रूप से आत्मघाती था। लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसलिए उस दबाव में खड़े होने के लिए शर्म से ऊपर उठना जरूरी था।
डॉक्टर कीनर की वो निजी कहानी इसको परफेक्ट तरीके से समझाती है। जब वो सड़क पर प्रचार कर रहे थे, तो नशे में धुत कुछ लोगों ने उन्हें पीटा और मजाक उड़ाया। शुरू में उन्हें बहुत जिल्लत महसूस हुई। सड़क पर मार खाना किसको अच्छा लगेगा?
सही बात है।
पर फिर उन्होंने बाइबल को देखा और समझा कि परमेश्वर के नाम के लिए दुख सहने पर लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंदित होना चाहिए।
वही दृष्टिकोण पॉल अपना रहे थे। समाज की शेम उनके ऑनर को हिला नहीं सकती थी, और इसी मजबूत मानसिकता के साथ वो अपनी एक रणनीति पर चल रहे थे। टू द जू फर्स्ट एंड ऑल्सो द ग्रीक, पहले यहूदी फिर यूनानी। रणनीति के हिसाब से ये बहुत लॉजिकल था। यहूदियों के पास ओल्ड टेस्टमेंट का ज्ञान पहले से था, उनके पास एक थियोलॉजिकल वोकैबुलरी थी, इसलिए वो हमेशा पहले सिनेगॉग्स यानी प्रार्थना घरों में जाते थे।
पर देखिए, लेक्चर में एक चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य आया था। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स एक्ट्स की किताब पर सवाल उठाते हैं कि क्या पॉल सच में सिनेगॉग्स में पहले जाते थे, और पॉल खुद 2 Corinthians 11 में लिखते हैं कि उन्हें सिनेगॉग्स में 5 बार 39 कोड़े मारे गए। अब सवाल ये है, इतनी भारी सजा खाना उनकी रणनीति को कैसे साबित करता है?
ये सजा दरअसल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। हमें याद रखना चाहिए कि पॉल एक रोमन नागरिक थे, और रोमन कानून के मुताबिक किसी भी नागरिक को इस तरह कोड़ों से पीटना गैर कानूनी था।
वेट, तो क्या वो सिर्फ ये कहकर बच सकते थे कि मैं रोमन नागरिक हूँ?
बिल्कुल, अगर वो चाहते तो कानूनी ढाल का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से बच सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 5 बार ये दर्दनाक सजा झेली।
पर क्यों? ऐसी सजा से तो इंसान की जान भी जा सकती है, उन्होंने अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा?
क्योंकि अगर वो रोमन कानून का हवाला देकर वहां से बच निकलते तो उन्हें उस सिनोगॉग से हमेशा के लिए एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता, उनका वहां बोलने का अधिकार खत्म हो जाता।
अरे बाप रे, यानी उन्होंने अपने ही शरीर को सजा के हवाले कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके बीच रहकर संदेश सुना सके।
हाँ, उनका वो दुख झेलना सबसे ठोस प्रमाण है कि वो किसी भी कीमत पर उन सिनागॉग्स में अपनी आवाज बनाए रखना चाहते थे। जब वहां काम पूरा होता तब तो वो गैर यहूदियों के पास जाते थे।
ये सच में आश्चर्यजनक है। अब इस सफर में हम उस थियोलॉजी के 2 सबसे भारी शब्दों पर आते हैं। पहला है राइचसनेस यानी डाइकोसिने, और दूसरा है फेथ यानी पिस्टस। डाइकोसिने से शुरुआत करते हैं। क्या ये सिर्फ एक लीगल फिक्शन है? मतलब परमेश्वर एक पापी को कानूनी तौर पर निर्दोष मान लेते हैं जबकि वो अंदर से वैसा ही खराब होता है?
नहीं, अगर हम ग्रीक ओल्ड टेस्टमेंट यानी सेप्टुजेंट देखें तो डाइकोसिने सिर्फ एक कोर्टरूम का टर्म नहीं है। इसका गहरा अर्थ परमेश्वर की वफादारी और उनकी दया से जुड़ा है। जब परमेश्वर किसी को जस्टिफाइड ठहराते हैं तो वो कोई झूठा खेल नहीं है जहां फाइल बंद कर दी जाती है।
इसे ना मैं अपनी एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ। सोचिए एक करप्टेड हार्ड ड्राइव है जिसमें पूरी तरह वायरस भरा है। अब जस्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई जज आए और उस वायरस भरी हार्ड ड्राइव पर बाहर से एक नया स्टिकर चिपका दे कि आज से ये ठीक है। ये तो लीगल फिक्शन हो गया ना।
बिल्कुल, उससे आंतरिक हकीकत तो नहीं बदली।
वही तो, इसीलिए इसे जेनेसिस 1:3 से समझना पड़ेगा। जब परमेश्वर कहते हैं प्रकाश हो तो प्रकाश सच में बन जाता है, उनका बोलना ही रचना है। तो जब वो किसी को जस्टिफाइड ठहराते हैं तो वो घोषणा हार्ड ड्राइव का ओनर बदल देती है और उसके तुरंत बाद रीजनरेशन शुरू होता है, यानी नया ओनर वायरस वाइप करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है।
ये हार्ड ड्राइव वाली तुलना एकदम सटीक है। परमेश्वर का शब्द अपने आप में शक्तिशाली है। वो सिर्फ थप्पा नहीं लगाता बल्कि जिस पर लगता है उसको अंदर से बदलना शुरू कर देता है, और इस पूरी प्रक्रिया की जो चाबी है वो है फेथ।
हाँ, फ्रॉम फेथ टू फेथ, शुरू से आखिर तक विश्वास। पर आज के समाज में तो विश्वास का पूरा मतलब ही बदल गया है। आज हम विश्वास को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना?
आजकल इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में विश्वास को एक अंधे भरोसे की तरह देखा जाता है। इमैनुअल कांट और कियर्केगॉर्ड जैसे फिलोसोफर्स ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। कियर्केगॉर्ड ने इसे लीप इन द डार्क या अंधेरे में छलांग बताया था,
कि जहां लॉजिक और साइंस खत्म वहां बस आंख बंद करके अंधेरे में कूद जाओ।
पर पॉल के अनुसार विश्वास ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर के सच की रोशनी में एक पूरी तरह सोच समझ कर उठाया गया कदम है।
उस परमेश्वर की विश्वसनीयता का बड़ा होना है। पॉल फेथ इन योर फेथ की नहीं, फेथ इन अ फेथफुल गॉड की बात कर रहे थे।
एग्जैक्टली, और यही इसका अंतिम लक्ष्य है। लेक्चर के अंत में हबक्कू 2:4 का जिक्र है, द राइचियस विल लिव बाय फेथ। इस विश्वास का मकसद मानवता को परमेश्वर के क्रोध से बचाना है, और ये क्रोध कोई आसमान से गिरती बिजलियां नहीं है।
तो क्या है?
परमेश्वर का क्रोध तब दिखता है जब वो लोगों को उनकी अपनी मॉरल इंसैनिटी, उनके नैतिक पागलपन और मूर्खता में उनके हाल पर छोड़ देते हैं।
यानी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपको वही दे दिया जाए जो आप मांग रहे हैं। जब इंसान को अपनी गलतियों में सुख मिलने लगे तो वो सबसे बड़ा क्रोध है। इस तबाही में छोड़ दिए जाने के बजाय विश्वास एक रास्ता है जो लोगों को आने वाले समय के अनंत जीवन की ओर ले जाता है।
वही, आज भी लोग स्टेटस और ईगो की दौड़ में भाग रहे हैं। ये प्राचीन शब्द आज भी सच्चाई और बदलाव का रास्ता दिखाते हैं।
सच में इन पन्नों में कैसी रोशनी है जो आज भी लोगों की सोच बदल सकती है। और आज की चर्चा को विराम देते हुए एक नया विचार मेरे दिमाग में घूम रहा है। जैसा हमने कहा कि विश्वास अंधेरे में छलांग नहीं, रोशनी में उठाया कदम है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे आधुनिक समाज की हर चीज के लिए ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक प्रूफ मांगने की जिद ने हमें एक तरह से अंधेरे में ही कैद कर दिया है?
ये सोचने वाली बात है,
है ना? क्या हम इस जिद के कारण उस रोशनी में कदम रखने से डरने लगे हैं जो सच तो है पर जिसे किसी टेस्ट ट्यूब में बंद नहीं किया जा सकता? क्या सबूत मांगने की ये भूख हमें उस सच्चाई से दूर कर रही है जो सिर्फ एक विश्वास भरे कदम का इंतजार कर रही है? मैं सवाल के साथ हमारे सुनने वालों को उनकी अपनी सोच के हवाले करती हूँ। आज इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।